नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाया है।
पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन इस महीने के 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। लोकसभा में वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में और संशोधन करना है। इस बीच संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में स्थानांतरण की सुविधा की घोषणा की है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केरल में राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 51 डॉक्टरों को सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती वीणा जॉर्ज ने बताया कि कुछ डॉक्टर पहले अवकाश पर थे और बाद में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए, जबकि कुछ डॉक्टरों ने विदेशों में अन्य संस्थानों में सेवाएं देना शुरू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्ष वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नागरिक प्रशासन के कुल 518 कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।
आज सुबह से मौसम साफ बने रहने के चलते हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाव अभियान में तेजी आई है। एनडीआरएफ के कमांडर गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से निकालकर मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान के लिए चिनुक, MH-17, ALH और चीता जैसे हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण उकाडा के 6 हेलीकॉप्टर मौके पर हैं। गंगोत्री क्षेत्र से करीब 400 लोगों को हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस हादसे में 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना के 1 JCO और 8 जवान भी लापता हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इस बीच मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस महीने की 12 तारीख तक उत्तराखंड और हिमालय प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, बिहार और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में कल अत्यधिक तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान 2025 के अंतर्गत लेह लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए 3,000 हस्तनिर्मित राखियां तैयार कर भेजी हैं, जो एकता और राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना को दर्शाता है। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।